नमस्कार, न्यूज 18 हिंदी पॉडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन श्रीवास्तव। पहले बात भारत वेस्ट इंडीज सीरीज की। वनडे के बाद भारत टी20 सीरीज भी 3-0 से जीतकर वेस्ट इंडीज का क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 17 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी टी20 रैंकिंग में इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ गई है। टीम इंडिया की कैरिबियाई टीम के खिलाफ पिछली 4 टी20 सीरीज में ये लगातार 4th सीरीज जीत है और भारत की ये लगातार 9th टी20 जीत थी। टीम इंडिया ने इसके पहले जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक लगातार 9 मैच भी जीते थे। बतौर पूर्णकालिक कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में ये लगातार 6वीं जीत थी और कुल मिलाकर 9वीं। उनसे पहले सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2018 में लगातार 9 मैच जीते थे। इस मामले में रोहित के पास 24 फरवरी से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने जा रही टी20 सीरीज में सरफराज को पीछे छोड़ने का मौका होगा। भारत ने रविवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव और हरफन मौला खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर की 4th विकेट के लिए मात्र 37 गेंदों में हुई 91 रनों की आतिशी साझेदारी की बदौलत वेस्ट इंडीज को 17 रनों से पराजित किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 31 गेंदों में 7 छक्के और 1 चौके की सहायता से 65 रनों की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने मात्र 19 गेंदों में धुआंधार नाबाद 35 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वैसे इस मैच में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में 53 रनों की उपयोगी साझेदारी की और स्थिति को संभाला। श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए, ईशान किशन 34 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 7 रन ही बना सके। जीत के लिए मिले 185 रनों के लक्ष्य के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 9 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। वेस्ट इंडीज की ओर से निकलस पूरन ने सबसे अधिक 61 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। मसल में खिंचाव की वजह से दीपक चाहर सिर्फ 11 गेंद ही फेंक सके जिसमें उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए। दीपक के स्थान पर 6वें गेंदबाज के रूप में वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजी में भी अपनी उपयोगिता साबित की और भारत को 2 बहुमूल्य विकेट दिलाए। भारत की ओर से 3 विकेट लेकर हर्षल पटेल सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू होने जा रही 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि दोनों ही प्रतिष्ठित बल्लेबाज पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं है और अपनी ख्याति व क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए घोषित टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत और पूर्व कप्तान विराट कोहली को टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है जबकि शार्दुल ठाकुर को दोनों फॉर्मेट में आराम दिया गया है। टीम में रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है जो चोट के कारण काफी समय से टीम में नहीं थे। चयन समिति के चेयरमैन और पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाए जाने की घोषणा की। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। टेस्ट टीम में पुजारा और रहाणे के अलावा रिद्धिमान साहा और ईशांत शर्मा भी जगह बनाने में सफल नहीं हो सके। टीम में उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार और कुलदीप यादव के साथ टीम में शामिल किए गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम में संजू सैमसन को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है। वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल चोटिल होने के कारण श्रीलंका सीरीज में नहीं खेल सकेंगे। मेलबर्न में खेले गए 5वें और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप बचाने में सफलता प्राप्त की। प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी 2021-22 सत्र के तहत खेले गए पहले राउंड के ग्रुप लीग मैच काफी रोमांचक रहे और इसी के साथ 2 साल बाद भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत भी हुई। इसी दौरान कुछ नए रिकॉर्ड भी बने। पहले राउंड के तहत 9 शहरों में 38 टीमों के बीच 19 मुकाबले खेले गए। 19 मुकाबलों में 7 मैच अनिर्णित रहे। 3 टीमों ने पारी और रनों के अंतर से बोनस अंक के साथ जीत हासिल की। एलीट ग्रुप ए के मैच में मध्य प्रदेश ने गुजरात को 106 रनों से और केरल ने मेघालय को 1 पारी और 166 रनों से हराया। एलीट ग्रुप बी में बंगाल ने बड़ौदा पर 4 विकेट से और हैदराबाद ने चंडीगढ़ पर 217 रनों से जीत दर्ज की। एलीट ग्रुप सी में कर्नाटक और रेलवे के बीच खेला गया मैच बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर ने पुदुचेरी को 8 विकेट से शिकस्त दी। एलीट ग्रुप डी में सौराष्ट्र और मुंबई के बीच खेला गया मैच और उड़ीसा और गोवा के बीच खेला गया मैच दोनों ही ड्रॉ समाप्त हुए। एलीट ग्रुप ई में राजस्थान ने आंध्र प्रदेश को 158 रनों से और उत्तराखंड ने सर्विसेज को 9 विकेट से हराकर 6-6 अंक हासिल किए। एलीट ग्रुप एफ के मैच में हरियाणा और त्रिपुरा के बीच और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला गया मैच भी ड्रॉ रहा। एलीट ग्रुप एच में दिल्ली और तमिलनाडु के बीच खेला गया मैच अनिर्णित समाप्त हुआ, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर तमिलनाडु को 3 और दिल्ली को 1 अंक मिला, जबकि इसी ग्रुप में छत्तीसगढ़ ने झारखंड को 8 विकेट से पराजित किया। प्लेट ग्रुप में खेले गए मैचों में नागालैंड ने सिक्किम को 6 विकेट से और मणिपुर ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 25 रनों से हराया, जबकि बिहार और मिजोरम के बीच मैच अनिर्णित समाप्त हुआ। रणजी ट्रॉफी के पहले ही राउंड के दौरान खास तौर से 2 बल्लेबाजों ने रोमांचक व ऐतिहासिक पारियां खेलकर रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले भारतीय अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान यश धुल ने गुवाहाटी में खेले गए ग्रुप एच के लीग मैच की दोनों पारियों में शतक बनाकर डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले दिल्ली के पहले और कुल मिलाकर 3रे खिलाड़ी बनने की शानदार उपलब्धि हासिल की। यश धुल से पहले 1952-53 में गुजरात के लिए नारी कॉन्ट्रैक्टर ने और 2012-13 में महाराष्ट्र के लिए विराग अवाटे ने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक बनाया था। उधर कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ खेले गए प्लेट ग्रुप के 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी लीग मैच के दूसरे दिन बिहार के मध्यक्रम के बल्लेबाज सकीब उल गनी ने इतिहास रच दिया। वे डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। सकीब उल गनी ने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इसके पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अजय रोहेरा के नाम था। उन्होंने अपने पहले मैच में 267 रनों की पारी खेली थी। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के दूसरे राउंड के 4 दिवसीय ग्रुप लीग मैच 24 फरवरी से खेले जाएंगे। और अंत में प्रो कबड्डी लीग अपने अंतिम चरण में है। शनिवार को खेले गए पहले संघर्षपूर्ण मैच में पुणेरी पल्टन ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-30 से हराकर और दूसरे मैच में गुजरात ने यू मुंबा पर 36-33 से रोमांचक जीत दर्ज कर प्ले ऑफ में जगह बनाई। ग्रुप स्टेज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में पटना पायरेट्स ने हरियाणा स्टीलर्स को 30-27 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मुकाबले में पटना का सामना एलिमिनेटर 1 की विजेता टीम से होगा। ये टीम यूपी और पुणेरी में से कोई एक होगी। दूसरे सेमीफाइनल मैच में दबंग दिल्ली का सामना एलिमिनेटर 2 की विजेता टीम से होगा। ये टीम गुजरात जॉइंट्स या बेंगलुरु बुल्स होगी। सेमीफाइनल मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 25 फरवरी को होगा। ये सभी मैच बेंगलुरु में होंगे। न्यूज 18 हिंदी पॉडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही। ताजा तरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।